मैंने अपनी करनी से अपना ओहदा खोया है। मैं तो किसी की पत्नी या माँ कहलाने के लायक नहीं। मैं माफी नहीं, सजा की हकदार हूँ जो मुझे इन बीते सालों में हर पल मिली है, और अब इस सजा का अंत होने वाला है। मैं तो माँ का कोई फर्ज नहीं निभा सकी। हो सके तो तुम बेटे होने का फर्ज निभाते हुए मेरी चिता को मुखाग्नि दे देना। ये आत्मा शरीर को त्यागे उससे पहले हो सके तो एक बार मिलने आ जाना मुझसे। इस दुनिया को छोड़ने से पहले एक आखिरी बार अपने बच्चों को देखने की इच्छा है। माफी के काबिल तो नहीं, पर अपने गुनाहों की सच्चे दिल से माफी मांगती हूँ। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। हो सके तो माफ कर देना मुझे। बाकी सबको भी बता देना कि अपने किए का पछतावा है मुझे। हो सके तो माफ कर दे मुझे। ऊपर जाऊंगी तो तुम्हारे पिता से भी माफी मांग लूंगी। शायद उनकी माफी पाकर मेरी सालों भटकती रूह और तड़पती आत्मा को कुछ शांति मिल जाए। एक आखिरी इल्तिजा और है। वैसे तो ये हक मैं खो चुकी हूँ, पर हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि हो सके तो मेरी आखिरी विदाई उस आंगन से करना जहाँ मैंने धीरज की दुल्हन बनकर कदम रखा था। उनकी बीवी बनकर तो जी ना सकी, उनकी विधवा बनकर उस आंगन से विदा हुई तो शायद ऊपर उनसे मुलाकात हो जाए। इसके नीचे हॉस्पिटल का एड्रेस लिखा था। ईशान ने सपाट चेहरे के साथ पूरा खत पढ़ा था। उसके बगल में खड़ी कशिश कभी उस पेपर को देखती तो कभी उसे तकती। मिश्रा जी, क्या लिखा है इसमें? हॉस्पिटल का पता है? कशिश का सवाल सुनकर ईशान ने वो पेपर खामोशी से उसकी ओर बढ़ा दिया। कशिश ने उस खत को पढ़ा। साफ साफ कुछ नहीं लिखा था, पर उन शब्दों में उनकी आपबीती और सालों से दिल में छुपाया दर्द कैद था। उन्होंने किस तरह की जिंदगी जी और कैसे जिंदा रहते हुए नर्क की आग में तन्हा झुलसती रहीं, इसकी कल्पना मात्र से कशिश का नाजुक दिल कांप उठा। उसके बाद वो खत कईयों ने पढ़ा। उनके दर्द की इंतहा जानकर सबको उन पर तरस आया। अपने गुनाहों से कई बढ़कर सजा भुगती उन्होंने, इसका एहसास आज सबको हो गया था। सबके साथ रजनी ने भी उस खत को पढ़ा और उसकी आंखें भीग गईं। ईशान कुछ देर खामोश वहां खड़ा रहा, फिर जैसे ही सीढ़ियों की ओर बढ़ने के लिए कदम उठाए, कशिश ने उसकी बाँह थामते हुए उसे रोक लिया। वहां कहाँ जा रहे हैं आप? हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। पढ़ा नहीं आपने? उनके पास ज्यादा वक्त नहीं, और वो लड़का भी कहकर गया था कि जितनी जल्दी हो सके उनसे मिल लें। मुझे किसी से नहीं मिलना। दर्द से सना सर्द लहजा और पाषाणों से कठोर शब्द। कशिश उसका जवाब सुनकर चौंक गई। ईशान ने अपनी बाँह पर से उसकी हथेली को हटाना चाहा, पर कशिश उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बेचैनी से उसे देखने लगी। ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों नहीं जाएंगे उनसे मिलने? माना उन्होंने बहुत से गुनाह किए हैं, और उनके उठाए उस कदम के कारण पापा, आपको, दीदी को और बाकी सबको बहुत कुछ सहना पड़ा है, पर उन्होंने भी कम आजाब नहीं भुगते हैं। आप शायद समझ नहीं सकते कि उन्होंने कैसी जिंदगी जी है और कितने दर्द में हैं वे सालों से, पर मैं समझ सकती हूँ। मिश्रा जी, न्याय करने का काम महादेव का है। उन्होंने माँ को उनके हर गुनाह की बढ़कर सजा दे दी है। अब उनके सजा के अंत की बारी है। जब वे अपने गुनाहों की सजा भुगत गईं, तो कैसा गुस्सा और कैसी नाराजगी। पछतावे की अग्नि में जलकर तो बड़े से बड़े गुनाहगार के भी दोष खत्म हो जाते हैं। जो इंसान सच्चे दिल से माफी मांगे, पश्चाताप करे, उसे तो महादेव भी माफ कर देते हैं। फिर उनके सामने हम जैसे मामूली इंसानों की क्या औकात है? आखिरी अच्छा तो दुश्मन की भी पूरी की जाती है। वे जैसी भी हैं, आपकी माँ है, उन्होंने आपको ये जिंदगी दी है। आज वे अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही हैं। मिश्रा जी, आपसे बस एक आखिरी बार मिलना चाहती हैं। आपको उनकी ये इच्छा पूरी करनी चाहिए, एक बेटे का फर्ज निभाना चाहिए। मैं आपको उन्हें माफ करने नहीं कह रही, पर उनसे अब मुंह मत मोड़िए। उनकी आखिरी इच्छा पूरी कीजिए। प्लीज मेरे लिए एक बार उनसे मिल लीजिए। वे आपको और दीदी को देख लेंगी तो सुकून से मर सकेंगी। उन्हें इस दर्द और जिल्लत भरी जिंदगी से आजादी दे दीजिए। कशिश ईशान से रिक्वेस्ट कर रही थी। ईशान का पत्थर दिल भी उसकी बातों से पिघलने लगा था। सच ही तो कहा था उसने कि जैसी भी थी, पर थी तो उसकी माँ, और इस सच्चाई को वो चाहकर भी झुठला नहीं सकता था। कुछ देर बाद सब हॉस्पिटल में थे। उनके वार्ड में ईशान ने पहला कदम रखा और डॉक्टर ने उस सफेद चादर से उनका चेहरा ढंक दिया। मर चुकी थी वो, इस दुनिया से जा चुकी थी। अपने बच्चों को छोड़कर जाने की सजा मिली थी उन्हें। इस दुनिया से विदा लेते हुए आखिरी बार अपने बच्चों का चेहरा तक ना देख सकी। ईशान और रजनी के साथ बाकी सबके कदम दरवाजे पर ही ठिटक गए। एक बेटे का फर्ज निभाते हुए ईशान ने यहाँ की सारी फॉर्मेलिटी पूरी की और रामविलास जी की इजाजत पर उन्हें मिश्रा निवास लेकर जाया गया। अभिषेक भी अपने परिवार संग आया था। कशिश ने जब उनकी हालत देखी तो अपने मुंह को हथेली से भींचे सिसकियां लेने लगी। उनसे पहली बार जब मिली थी तब से कितना बदल गई थी वो, पहचान तक नहीं आ रही थी।
सर पर एक बाल नहीं था। चेहरे और जिस्म पर जगह जगह अजीब से दाग थे। शरीर सूखी लकड़ी जैसा पतला और कमजोर हो गया था। अपने गुनाहों की बहुत बड़ी सजा काटी थी उन्होंने और सुकून की मौत तक नसीब ना हो सकी थी उन्हें। सारी नाराजगी और दुश्मनी इंसान के साथ ही खत्म हो जाती है। मौत के बाद जैसे ही उसकी आत्मा परमात्मा से मिलती है, उसके सभी गुनाह और दोषों का नाश हो जाता है। जाने वाले इंसान के साथ सभी किले शिकवे भी मिट जाते हैं। सुरेखा जी की गलतियों को भी भुला दिया गया था और उनकी आखिरी इच्छा का मान रखते हुए मिश्रा सदन से धीरज मिश्रा की विधवा के रूप में इज्जत और सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई थी। ईशान ने बेटे का फर्ज निभाते हुए उनकी अर्थी को कंधा दिया। मृतक शक की यात्रा मणिकर्णिका घाट जाकर खत्म हुई, जहां रोज सैकड़ों चिताएं जलाई जाती हैं, और आज उन चिताओं में सुरेखा जी की चिता भी शामिल थी जिसे ईशान ने मुखाग्नि दी थी। एक वो दिन था जब इसी जगह उसने अपने पिता की अंतिम विदाई दी थी और आज इसी जगह अपनी माँ के शव को अग्नि के सुपुर्द किया था। उस वक्त वो गमगीन था और आज उदासीन। उस वक्त उसकी आंखें भीगी थीं और आज वो आंखें सूनापन लिए हुए थीं। अगले दिन उनकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए छोटा सा यज्ञ भी किया गया था जिसमें सभी शामिल थे। बस जया जी को इन सबसे दूर रखा गया था। ईशान ने जब उनकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया तब कशिश की आंखें जाने किन जज्बों के तले भीग गईं, जिसे ईशान ने देखा तो सही पर कहा कुछ नहीं। धीरज जी के ही तरह सुरेखा जी का क्रियाकर्म भी पूरे विधि विधान से हुआ था। 13वें दिन भोज किया गया, उसके बाद घर का शुद्धिकरण किया गया। रजनी इस दौरान कुछ भावुक हुई, परेशान पत्थर बना रहा या शायद अपना दर्द उस सपाट भावहीन चेहरे के पीछे छुपा रहा। देखते देखते कई दिन गुजर गए। धीरे धीरे सभी अपने आम दिनचर्या में आ गए। उस दिन के बाद से सबसे बड़ा बदलाव ईशान में देखने को मिला था। वो एक बार फिर चुपचाप सा रहने लगा था। कशिश और उसकी बात ना के बराबर हो गई थी। कशिश को लगा उसे इस अचानक मिले सदमे से उबरने के लिए वक्त चाहिए, इसलिए उसने भी उसे ज्यादा परेशान नहीं किया। पर अब ईशान की खामोशी उसे खलने लगी थी। रात का वक्त था। सारा दिन दुकान में मेहनत करने के बाद ईशान आज फिर रोज जैसे आंखें मूंदे लिखा हुआ था। कशिश कुछ पल खामोशी से उसे तकती रही, फिर सरक कर उसके पास चली आई और उसके सीने पर दिल के पास अपना सर रखते हुए बोली, मिश्रा जी आप मुझसे नाराज हैं क्या? ईशान जो अब भी आराम से लेटा था, उसका सवाल सुनकर उसने आंखें मूंदे हुए ही जवाब दिया, नहीं। संक्षिप्त जवाब देकर वो चुप हो गया। कशिश ने अफसर उठाकर उसे देखते हुए मायूसी से कहा, पर मुझे तो लगता है जैसे आप मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। उसकी आवाज में छलकती मायूसी को महसूस करते हुए ईशान ने अपनी आंखें खोली और गंभीरता से बोला,
नहीं हूँ तुमसे नाराज। तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि तुमसे नाराज होना पड़े, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने ऐसा काम किया है। और वो काम क्या है? ईशान ने भौं उछालते हुए सवाल किया। कशिश ने अपनी पलकें झुका ली और इसके कुर्ते के बटन पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए बोली,